ओम शांति। 31 दिसंबर 2016 की अव्यक्त मुरली से प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, योगेश्वर किसे कहेंगे और उसकी लाइन में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? योगेश्वर किसे कहेंगे और उसकी लाइन में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो योगी किसे कहेंगे, किसे कहेंगे जिसकी एक रस अवस्था है, अवस्था में बार बार विचलित जो नहीं है वह योगी। योगी अर्थात जो तपस्वी है। योगी की कुछ मुख्य क्वालिफिकेशंस है, कुछ ऐसी परिभाषा है जो द्वापर से आत्माओं ने तपस्या की, उन्होंने स्वयं को योगी या दूसरों को जो योगी कहा वो किस आधार पर कहा, तो पहले हम उनकी परिभाषा देखेंगे और फिर बाबा ने जो परिभाषा सुनाई है योगी की वो। तो संसार में जो अध्यात्मवाद है, संसार में जो धर्म की खोज हुई, उसमें विशेष भारत में और अन्य देशों में भी मुख्य रूप से योगी उसे कहा जाता है जो अनासक्त है। योगी की जो प्रथम परिभाषा बताई जाती है वो है अनासक्ति। इस संसार की किसी भी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं, इस संसार में कहीं पर भी आसक्ति नहीं, कोई वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, कहीं पर कोई मोह नहीं। ऐसी मोहजीत अवस्था योगी की अवस्था है। आज यहां है, कल वहां है। सन्यासियों के लिए नियम थे भारत में 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पर नहीं टिकना है। जैसे नदी बहती रहती है वैसे योगी भी बहता रहे, क्योंकि जैसे ही किसी स्थान पर ज्यादा समय रुका जाता है तो उस स्थान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर न चाहते हुए भी मोह उत्पन्न होता है और एक के पीछे एक सारी आसक्तियां उत्पन्न होती है। तो योगी अर्थात अनासक्त, योगी अर्थात वैरागी, जिसके हृदय में निरंतर वैराग की ज्वाला धड़कती हो, यहां का कुछ भी नहीं चाहिए। राग का अभाव, राग का न होना अर्थात वैराग, इस समस्त संसार के प्रति वैराग, जो जो अनात्मा है उसके प्रति वैराग, जो जो आत्मा से संबंधित है उसके प्रति ही राग। केवल आत्मा और अनात्मा दो भागों में सृष्टि का विभाजन करते हैं। जो जो अनात्मा है वो सबके प्रति वैराग, वीतराग का भाव, तो वह योगी की परिभाषा है। अनासक्त, वैरागी, तीसरा अखंड ब्रह्मचारी। योगी अर्थात जो अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में दृढ़ है। योगी अर्थात पीछे बढ़ जाए, योगी अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जहां जहां खंडन है वह योग का खंडन है, बाकी सारी चीजें स्वीकार की जा सकती है, परंतु पवित्रता का खंडन ये नहीं स्वीकार किया जा सकता। वो भले क्रोध करे, लोभ आ जाए, चलेगा, अहंकारी तो होते ही है, परंतु उनकी जो मुख्य धारणा है वो है पवित्रता, ब्रह्मचर्य। पवित्रता से भी ज्यादा ब्रह्मचर्य। उसके लिए कई सारे उपाय वो करते हैं, कई सफल होते हैं, कई सफल नहीं होते हैं। कोई पलायन मार्ग पर जाता है, कोई दमन के मार्ग पर जाता है। तो ब्रह्मचर्य, अगली जो मुख्य धारणा है योगी की वो है कर्मेंद्रिय जीत। योगी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, उसकी कर्मेंद्रिया उसके वश में हो। उसके लिए भी वो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करता है। आंखों की साधना अलग से करता है, कर्मेंद्रिय जीत और ब्रह्मचर्य दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अभी जो संडे में मुरली आ रही है उसमें बाबा ने कर्मातीत की बहुत सारी अलग अलग परिभाषा दी है, उसमें से एक परिभाषा है कर्मेंद्रिय जीत, कर्मेंद्रियों पर शासन, कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण अधिकार। एक परिभाषा कर्म से संबंधित है, कर्म का प्रभाव, कर्म का बंधन। दूसरी परिभाषा कर्मेंद्रियों का वश में रहना, इससे संबंधित है। कर्मेंद्रियों को दमन से वश में करने का प्रयास करते हैं, या फिर कर्मेंद्रियों को मादक पदार्थों से वश में करने का प्रयास न करते हैं और समाधि सी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करते, परंतु वो भी अल्पकालीन ही रहती है। तो योगी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, योगी अर्थात समदर्शी, समदर्शी सब उसके लिए समान है, उसके लिए कोई वीआईपी नहीं है। अगली परिभाषा है योगी अर्थात अपरिग्रह। किसी भी चीज का वो संग्रह नहीं करेगा, किसी भी चीज को, गिफ्ट को सौगात एक्सेप्ट नहीं करता है। नॉन पोजेशन, अपने पास किसी सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करके रखना ये योगी के लक्षण नहीं है। ये कुछ अलग प्रकार की परिभाषाएं थी। कुछ परिभाषाएं कुछ और है, जैसे योगी अर्थात सारे जगत का हित करने वाला, योगी अर्थात जिसका हृदय अतिशय निर्मल, जिसका हृदय अतिशय दयावान है, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत की समान है, मक्खन की तरह है, कोमल है, सभी के प्रति प्रेम भरा है जिसके हृदय में, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कामना उसके हृदय में है, रहम दिल है, तो ये और सबसे एक मुख्य धारणा है अविचल, स्थिर मन है, स्थैर्यम बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ है, बाहर की परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती। संसार के लोग आज स्तुति करेंगे, कल निंदा करेंगे, आज महिमा करेंगे, कल ग्लानि करेंगे, ना तो उस महिमा का और ना ही उस ग्लानि का उस पर कोई प्रभाव है। डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर्स, प्रसिद्धि की कामना सारी कामनाओं में निकृष्ट कामना है। योगी के जीवन में प्रसिद्धि एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए योगी उसका भी त्याग कर देता है। तो नाम मान शान, सर्दी गर्मी, बाहर की जो भी चीजें प्रभावित करने वाली, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, स्थित प्रज्ञ योगी, इन सभी में समान रहता है। योगी अर्थात बैलेंस, ये संसार में भी माना है और गीता में योगी की बहुत सारी परिभाषाएं दी है। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि योगी किसे कहेंगे, नाति ऊचम नाति नीचम, योगी अर्थात बैलेंस, योगी अर्थात निद्रा जीत, योगी अर्थात भोजन की आसक्ति से परे। उसे भी योगी नहीं कहेंगे वो बिल्कुल भोजन नहीं करता, उसे भी नहीं कहेंगे जो अति करता है, अति सर्वत्र वर्जित है। अति में जाने वाला योगी नहीं हो सकता है। जो बैलेंस वाला है उसे भी योगी नहीं कहेंगे जो बिल्कुल नींद नहीं करता है, उसे भी योगी नहीं कहेंगे जो अति निद्रा एक्सट्रीम्स में नहीं जाने वाला हो उसे योगी नहीं कहेंगे। तो बैलेंस एक मुख्य क्वालिफिकेशन बताई है योगी की। ये सारी परिभाषाएं संसार की है। बाबा ने योगी के लिए क्या कहा है? योगी अर्थात निरंतर योगी, अर्थात निरंतर एक की याद में समाया हुआ, एक स्थिति वाला, निरंतर सेवाधारी। गुड मॉर्निंग से सेवा चालू होती है, गुड नाइट तक सेवा ही सेवा। सेवा के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। अगले संडे की मुरली लंदन से मुलाकात। जैसे निरंतर योगी हो वैसे निरंतर सेवाधारी हो। सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, क्राउन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए योगी अर्थात सेवाधारी भी। और बाबा ने क्या कहा है योगी के लिए? निरंतर याद की यात्रा में निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, निरंतर रूहानी ड्रिल का अभ्यास करने वाले, निरंतर ज्ञान के मंथन में लगे हुए। प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, आज के मुरली का महावाक्य है। तो मुरली सुनने वाले, सुनाने वाले, मंथन करने वाले, मुरली में आनंद का अनुभव करने वाले, संकल्पों में जिनका आनंद है, चाहे शरीर कितना भी बीमार हो, शरीर में कितनी भी व्याधियां हो, परंतु मगन अवस्था, यह योगी के लक्षण है। और बाबा ने योगी किसको कहा है? बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है। बेहद के वैरागी जो है वह योगी है। त्याग तपस्या सेवा जिनके जीवन में है वह योगी है। क्या? संसार जब सोता है, गीता में लिखा है योगी उसे कहेंगे जो संसार के लिए रात है वो योगी के लिए दिन है। जब संसार जागता है तब योगी सोता है, और जब संसार सोता है तो योगी जागता है। या निशाम सर्वभूतानाम, ये जिस संसार जिसे निशा कहता है वो योगी के लिए दिन है। उस रजनी में वो रजनीश है। और योगी बुद्धि से सदा ब्रह्म लोक में रहने वाले, जिसकी क्लीन और क्लियर माइंड है। स्लेट कैसी हो? लास्ट संडे की मुरली, माइंड की स्लेट, प्लेट या मिरर या फिर पेपर कैसा हो? क्लीन और क्लियर, सच्चाई और सफाई। और योगी अर्थात परमात्मा प्रेम में मगन, याद में मगन, लवलीन अवस्था, आत्मिक दृष्टि का जिन्हें अभ्यास है वही योगी। कुछ योगी की परिभाषा है अपने लिए, कुछ बाहर उनकी कैसी दृष्टि है उसके लिए। जगत को खेल समझने वाले योगी अर्थात जो इस संसार को खेल समझते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ड्रामा। ड्रामा की सारी पॉइंट्स बुद्धि में है। कोई भी बात आश्चर्य नहीं होती है कोई भी बात से। ये जो एक बहुत अच्छी अवस्था है कि कोई भी बात जीवन में आश्चर्य ना करे, कि हमें आश्चर्य ना लगे कि ऐसा क्यों हो गया। विदेश में एक महान दार्शनिक हुआ गुरजीएफ, उसके पिता ने मरते मरते उसे एक बात कही थी जब वो बहुत छोटा सा था, कि एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार की कोई भी बात से कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होना। कोई भी बात हो, कितनी भी भयावह, इस संसार की कोई भी बात तुम्हें आश्चर्य के भाव से ना भर दे, धक्का ना दे दे कि ऐसा क्यों हो गया। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों। बाबा ने जो बताया कि रिपीट हो रहा है ड्रामा, नथिंग न्यू है। और योगेश्वर की लाइन, योगेश्वर किसे कहेंगे? अच्छा, लडोल है स्थिति में और साक्षी है। एक योगी की दो मुख्य परिभाषा है, साक्षी और उपराम। योगी साक्षी है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। ये एक साधना है, बार बार डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर देखना ड्रामा को। सबसे अच्छा जजमेंट किसका होता है? क्रिकेट की मैच होती है, दो एम्पायर इधर होते हैं ग्राउंड में, एक एम्पायर ग्राउंड के बाहर होता है, थर्ड एम्पायर। सबसे एक्यूरेट जजमेंट उसका होता है। क्यों? थर्ड एम्पायर उधर होता है बैठा, सबसे दूर है, जो भी है स्क्रीन देख रहा है, लैपटॉप हो या स्क्रीन हो, क्योंकि वो एकदम डिटैच्ड ऑब्जर्वर है, वो उसका साक्षी भाव सबसे ज्यादा है, उसकी बुद्धि है कहीं पर भी बायस्ड नहीं है, कहीं पूर्वाग्रह नहीं है बुद्धि में किसी के प्रति, एकदम डिटैच्ड। जितना हम अपने आप से डिटैच्ड है उतना हम योगी है, अपने रोल से भी डिटैच। रोल अर्थात माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सेवाधारी है, वो सेवाधारी भी डिटैच रूप से हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो मैं नहीं हूं, वो मेरा रोल है, वो अलग मैं अलग, मैं आत्मा हूं और ये सारे रोल है, रोल कॉन्शियसनेस, इससे भी बाहर अपने आप को इतना डिटैच भाव से देखना, ये मैं हूं, यहां हूं, ये सब कर रहा हूं, परंतु मैं अलग हूं, ये रोल है, जो भी रोल मिला हुआ है। लोग अपना रोल इतना अच्छे से करते हैं, कल भी जैसे कहा था, स्टेज पर है हम, यहां तक कि फिल्मों में देखा गया है कि कई लोगों को जब किसी बूढ़े का रोल प्ले करना होता है तो वो विग पहनते हैं, परंतु कई लोग होते हैं जिनके बाल पहले से ही सफेद है, ठीक है, कोई एक्टर है जिसके बाल सफेद है, परंतु वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि मेरे बाल सफेद है, तो पहले ही विग लगा के आता है ब्लैक, और उसमें फिर उसको प्ले करता है बूढ़े का, तो ऊपर से दूसरा विग लगाता है व्हाइट, इतना अपने आप को छिपाना चाहते हैं कि अच्छा दिखूं। डायरेक्ट प्ले कर सकता है, परंतु वहां जो सेट पे लोग हैं उनके लिए पहले ब्लैक, वो घर से पहन के आएगा और फिर वहां दिखाएगा कि मुझे अब बूढ़ा का प्ले करना है रोल, ओल्ड मैन, तो वहां फिर से व्हाइट लगाएगा उसके ऊपर ऊपर, तो इतना एक्यूरेसी होती है। तो हमारा रोल इतना हमारा परफेक्ट हो, परंतु वो उतना डिटैच भाव भी हो, इन्वॉल्वमेंट कितनी हो और डिटैचमेंट कितना हो। योगी अर्थात सारा हमारा योगी जीवन डिटैचमेंट पर है, कर्म में भी डिटैच, रिलेशंस में भी डिटैच्ड, संबंध संपर्क में डिटैच्ड, हर चीज में डिटैच्ड। डिटैचमेंट नहीं तो योगी ही नहीं। सारा पुरुषार्थ न्यारा बनने का है, प्यारा बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, जो न्यारा है वो स्वतः ही प्यारा है। प्यारा बनने का पुरुषार्थ करो तो माया हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी, किसी को खुश करने का पुरुषार्थ करो, कभी खुश होंगे क्या संसार के लोग, मुश्किल है। डिटैचमेंट, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, अपने रोल से भी डिटैच, अपने शरीर की जो बीमारी है उससे भी डिटैच। हम शरीर की बीमारी इतना दुख नहीं देती है जितना हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो दुख देता है। बॉडी इतना दुख नहीं देता जितना माइंड उस बॉडी के डिसीज का चिंतन कर रहा है। बॉडी में बीमारी है ऐसा नहीं कि नहीं है, है, परंतु माइंड उसका जितना चिंतन कर रहा है, जितना उसके बारे में सोच रहा है, जितना उससे प्रभावित हो रहा है और अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है बॉडी से, उतना उसका डिटैचमेंट कम हो रहा है, और जहां डिटैचमेंट कम हो रहा है वहां पीड़ा, दर्द, दुख, साइकोलॉजिकल पेन, ट्रॉमा, पुअर मी, सेल्फ गिल्ट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, ये सारे भाव वहां प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट का जो लेवल है वो कम है। तो योगी अर्थात डिटैच, और योगी अर्थात सबके प्रति शुभ भावनाएं, सभी के प्रति शुभ भावना, मास्टर रहम का सागर, पवित्रता का सागर, शुभ भावना, शुभ कामना, मास्टर रूहानी प्रेम का सागर। संडे की मुरली में बाबा ने ऐसे 5 समान दिए हैं, शुभ भावनाओं से भरा हुआ, पवित्र, रहम, वरदानी और रूहानी प्रेम का सागर। ये 5 क्वालिफिकेशंस है किसकी, जो इष्ट देव होंगे, किसकी, जो स्वराज्य अधिकारी है, इस कर्मातीत स्टेज पर जो स्थित है, तख्त पर जो बैठे हैं, जिनको बिंदी लगी है दिव्य गुणों की जो चमक रही है, ऐसी जो सभा है, ऐसी जो आत्मा है इष्ट देव के रूप में प्रसिद्ध प्रख्यात होगी और लोग उन्हें इन पांच रूपों में देखेंगे। तो ये योगी की क्वालिफिकेशन है। मुख्य उसमें अगर देखा जाए तो हम कहेंगे एक ही है, डिटैचमेंट। लेवल ऑफ डिटैचमेंट कितना है उसका। अगर कोई डिटैच नहीं है उसे योगी नहीं कहा जा सकता। कहीं पर भी अटैच, पुण्य कर्मों में भी अटैचमेंट नहीं। पुण्य कर्म, कर्म ही बांधते, कर्मातीत अर्थात कर्म के ही बंधन से परे। योगी अर्थात इच्छा मात्रम अविद्य, इच्छा फिर कोई भी हो, वो ये भी इच्छा हो कि मुझे कर्मातीत होना है, वो भी इच्छा ही है। वो संकल्पों की सजा से भी मुक्त। वो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, कौन से जीवन में मजा है और कौन से जीवन में सजा है, इसमें आपकी क्या रजा है। प्रश्न भी खत्म। अच्छा बनाया, किसने बनाया? राहुल भाई। अच्छा, जीवन में कौन से जीवन में मजा है, लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट, कौन से जीवन में सजा है, इसमें आपकी क्या रजा है। रजा अर्थात राजी, मर्जी, इच्छा, सहमति। रजा अर्थात एक दूसरा अर्थ भी होता है छुट्टी, कब रजा दे रहे हो, रजा कब है। पेशेंट्स पूछते आज रजा दे दो, मतलब आज छुट्टी कर दो। वो गुजराती में ज्यादा प्रयुक्त होता है रजा। तो क्या रजा है। तो सजा का जीवन किसे कहेंगे, सजा का जीवन, मेंटल पनिशमेंट, सजा जिसमें हो। उस दिन थॉट ऑफ पावर, पावर ऑफ थॉट की क्लास में बताया था सात प्रकार की सजाएं। हाँ, सब कुछ आता है। सबसे पहला तो गिल्ट, अपराध भाव, अपराध बोध, मेरे से गलती हो गई। इस अपराध भाव से ही मुक्त नहीं हो रहा है। कंट्राइट स्पिरिट, कॉन्ट्रिशन, ये जो पश्चाताप की अवस्था है जिसमें स्वयं को ही दोषी ठहरा रहा है आत्मा, ये एक सजा की अवस्था है। दूसरी अवस्था है स्ट्रेस और टेंशन, निरंतर एक स्ट्रेस है। ब्राह्मण बन गए, भगवान मिल गया, सब हो गया, मधुबन में आ गए, सेवा कर रहे हैं, परंतु स्ट्रेस छोड़ता नहीं पीछा। अज्ञात स्ट्रेस, एक अज्ञात तनाव भूत की तरह पीछे पड़ा है। पीछे मुड़ के देखो तो दिखता नहीं कहां है, जैसे सामने देखो ऐसे लगते कोई पीछे कर रहा है, काली छी छाया। तीसरा है भय, एंग्जाइटी, भय। किसका भय है पता नहीं, परंतु भय है। एक कागज का शेर पीछे पड़ा हुआ है, भाग रहा 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 है। अज्ञात है, अपरिचित से भय। अगला है अनसर्टेनिटी, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। अनसर्टेनिटी फियर में ही आ जाएगा। फिर है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, मेरा क्या होगा, कोई है क्या यज्ञ में साथी, अगर कुछ हो गया तो साथ देने के लिए, आसपास नजर दौड़ाओ, कोई है, कोई दिख नहीं रहा है, अगर सारे मेरे विरोध में हो जाए तो, अगर बीमार पड़ जाओ तो, अगर बूढ़ा हो जाओ तो, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो, अगर कुछ दिया हुआ है अधिकार वो छीन लिया जाए तो, अगर कोई पद प्राप्त है अगर वो पद ले लिया जाए तो, अगर अचानक पैसे ही ना हो, अचानक लौकिक में कोई समस्या आ जाए और पैसों का अभाव और कहीं से पैसे ना मिले तो, अचानक स्वजनों की मृत्यु हो जाए तो, अचानक स्वजनों की को कोई बीमारी आ जाए तो, हमें बीमारी वो तो चलो ठीक है, पर जो मित्र संबंधी है, घर वाले हैं, उनको कोई बीमारी आ जाए, अगर हमें ही कोई लाइलाज सी बीमारी हो जाए, कैंसर ही हो जाए, कहां भागू, इधर भागू, उसके पास भागू, किसके पास भागू, कुछ भी हो सकता है ना। भय, एंजाइटी, असुरक्षा, असुरक्षा का भाव, भालू सामने आ गया तो, जानवरों से आक्रमण हो जाए अचानक तो,
अपने
अचानक दुर्घटना हो जाए तो, अचानक पुलिस केस, अचानक कोर्ट केस, अचानक कोई हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर दे तो, अचानक कोई झूठा आरोप, झूठा इल्जाम यज्ञ की तरफ से, बाहर की तरफ से लग जाए तो, असुरक्षा, भय, अचानक माया का वार हो जाए, अचानक वह संस्कार जो छोड़ चुके थे, वह आदत फिर से आ गई तो, कितने सारे तो है, असुरक्षा, इनसे मुक्ति की विधि है, इन संकल्पों को मन में लाना और देखना तो वो समाप्त हो जाएंगे। उनको वैसे ही देखना जैसे वो है नहीं इतने भय भयावह, परंतु क्लियर नहीं है इसके लिए भयभीत कराते मन को। तो ये सब सजा और मजा की जीवन, सुख की जीवन, आनंद की जीवन, पवित्रता की जीवन, संतुष्टता की जीवन, सेवा की जीवन, याद में मगन की जीवन, ब्राह्मण परिवार के प्रेम की जीवन, उमंग की जीवन, सहयोग की जीवन, स्नेह की जीवन, अतीन्द्रिय सुखमय जीवन, मन के कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेट की जीवन, ये सब मजा की जीवन है। कंट्रोल ऑफ माइंड के लिए कौन सी पावरफुल प्रैक्टिस होनी चाहिए? आज किसका कटान है? कंट्रोल ऑफ माइंड के लिए कौन सा अभ्यास चाहिए? गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, मैं क्या करूं, मन वश में ही नहीं आता, चंचलम मनः कृष्ण। हे गोविंद, मेरा मन वश में नहीं है, मैं क्या करूं? मन को वश में करना तो इस वायु को वश में करने जैसा है, क्या करूं मैं, चंचलम ही मनः कृष्ण। क्या करो? अभ्यासेन तू कौन्तेय, हे कौन्ती पुत्र, हे कौन्तेय, अभ्यास वैराग्येन च गुह्यते। वैराग और अभ्यास से अपने मन को वश में कर, प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन, प्रैक्टिस एंड डिस इंटरेस्ट, वैराग का भाव मन में प्रकट कर, इस संसार के प्रति जो भी राग है वैराग की तलवार निकाल और उसको, सभी रागों को काट दे। ये जो वृक्ष है जो उल्टा है, 15वां अध्याय, संसार का जो वृक्ष है उसको काट दे। तो वैराग से और अभ्यास से, निरंतर अभ्यास, जहां जहां मन दौड़े भागे उसको फिर फिर वश में लाना, फिर फिर मुझ में लगाना, मन मना भव मध्याजी माम मक्ता माम नमस्करो, सब ओर से निकाल के मन मुझ में लगा। मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। सब तरफ से हटा के मुझ में लगा, क्योंकि मैं ही जगत का आदि मध्य अंत हूं। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द बिगिनिंग मिडल एंड द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। बाइबल में लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस जगत का प्रकाश हूं। ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अज्ञात अंधकार में नहीं होगा। तो अपने चित्त को, अपने मन को एक में स्थिर करना, प्रैक्टिस करना और इस संसार से वैराग, ये विधि है मन को वश में करने की। मन को वश में करने तो बहुत सारी विधि है, परंतु ये दो बातें आज कही, आगे की बातें कल। ओम शांति।